اس سے اگلی آیات سمجھ لیجئے کہ پوری سورت پردے کے موضوع کا تتمہ ہے. آیت نمبر 59 سے 62 ہے. میں ان سب کو کوشش کر کے اکٹھا لوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. یا یوہن نبی یو, اے نبی. اب یہاں نوٹ کیجئے کس کو بلایا جا رہا ہے, نبی کو بلایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ یا یوہل مومنات, یا یوہل مسلمات, عورتوں کو نہیں کہا گیا. کہا کس کو گیا, نبی کو کہا گیا. پیچھے آپ پڑھ چکے میں کر نفی بیوتی کن, کہ تمہارا اصل ٹھکانہ گھر ہے, گھروں میں رہو, ضرورتیں نبھاؤ. پھر پیچھے ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ جب کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو, یعنی عورت مرد کا اختلاط نہ ہو, مکسنگ نہ ہو, سیگریگیشن ہو. اب یہاں سے آگے آ کے تیسرا حکم ہے پردے کا, یا یوہن نبی یو, اے نبی, قل لی ازواجک, کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے. ذرا رکیے, قل لی ازواجک, کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے. ہم سب خوش. اچھا, جو آگے حکم آنے والا ہے یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے, اور یہاں میں نے اس لیے آپ کو پوز دلایا کہ کوئی کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو سورت الاحزاب میں پردے کی آیتیں ہیں نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیویوں کے لیے, کیونکہ پیچھے ان کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, بیوی کے لفظ پہ نہیں تو وہ بناتک, بیٹیوں کو بھی کہہ دیں. کچھ لمبی زبان سے بولیں گے ہاں ہاں یہ فاطمہ رقیہ اور ام کلثوم کو حکم ہے, وہ تو آپ کی بیٹیاں تھیں, ہم تو بیٹیاں نہیں ہیں نا. تو اللہ نے اس حجت کو بھی تمام کرتے ہوئے کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی خواتین, یعنی تمام اہل ایمان عورتوں کو کہہ دو. صرف اس ایک انداز کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو آپ کو اس حسن کی خوبصورتی دکھے گی. میں پہلے آپ کو اس انداز پہ تھوڑا سا توجہ دلاؤں. ایک ہوتا ہے کہ آپ خود جاتے ہیں کسی کے پاس اور کوئی چیز مانگتے ہیں, کسی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں. اگلا کہتا ہے چلو جاؤ, تمہیں ہم نے کیا رشتہ دینا ہے, ہم نہیں دیتے تمہیں. اب آپ کے دل میں بڑی خواہش ہے اس بچی کا رشتہ لینے کی, آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اور ان کے خاندان کی کوئی بڑی خاتون یا کسی بڑے خاندان کے جو شخص ان کو ڈالتے ہیں, ابا کو نہ نہیں کریں گی, اما کو نہ نہیں کریں گی, ایسا ہوتا ہے نا. حالانکہ اس طرح کے زبردستی کے رشتہ کروانے نہیں چاہیے, لیکن صرف ایک بات ہے کہ لوگ بڑوں کو نہ نہیں کرتے. تصدیق کریں گے آپ اس بات کی؟ کوئی بات بھی کہنی ہو, لینی ہو, دینی ہو, کسی بڑے کو ڈال دیں پھر اگلا چپ کرتا ہے کہ اب میں اس بڑے کو نہ کروں. اس ایک آیت میں اللہ نے نبی کو ڈالا, یعنی میں صرف اپنے آپ کو یہ بات کہوں گی, اگر میں خود کو ایک عورت سمجھتی ہوں یا میں ایمان والا سمجھتی ہوں, کہ پردے کا حکم اللہ نے ڈائریکٹ نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی کو ڈالا ہے, کہ عورتوں قیامت کے دن صرف تم میرے سامنے نہیں, اس نبی کے سامنے بھی جواب دے ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ اتنی خوبصورت شریعت تمہارے پاس آئی, اور کیا کہہ دو ان کو, یدنین علیہن من جلابیبہن, لٹکا لیں اپنے اوپر چادروں کا ایک پلو. یدنین دنا یدنو, دنیا کا روٹ بھی اسی سے, میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو لے کے جاؤں گی بعد میں, صرف ابھی انداز سمجھ لیں. لٹکا لو اپنے اوپر اپنی جلباب کو. جلابیب جو ہے یہ جلباب کی جمع ہے, جلباب آج بھی عربی برقعے کو لوگ کہتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سر پہ رکھتے ہیں تو وہ پاؤں میں چھپتا ہے. تو جلباب کہتے ہی اس کپڑے کو عرب لوگ, کہ سر پہ رکھا جائے تو پاؤں کی انگلیاں تک اس میں چھپ جائیں. عورت کے قد سے تقریباً ایک بالش لمبا ہوتا ہے وہ, اور اگر وہ اندر ہاتھ کر لے تو وہ ایک قسم کی پوری چادر اس کے اوپر ہوتی ہے. اس آیت کو سنتے ہوئے ساتھ ہی سورت نور کی آیت 31 بھی رکھ لیجئے ذہن میں, کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ ڈالے رکھو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر. عرب لوگ سر پہ دوپٹہ لیتی تھیں عورتیں, لیکن اس کو سینے سے پیچھے ڈال دیتی تھی, یعنی سر پہ لے کے پورا پیچھے سی ایک نوٹ سی لگا دی, وہ اور ہی خوبصورت چیز بن جاتی تھی. اس آیت میں سورت نور میں ہم ڈیٹیل سے دیکھ چکے کہ سینے کے اوپر بھی بکل مارو کے معنوں میں, سکارف لو, چادر لو, دوپٹہ لو, تو تمہارا سینہ بھی ڈھکنا چاہیے, یہ نہیں کہ اس کو کھول کے پیش کرو. ٹھیک ہے, اب وہ اوڑھنی کیا تھی؟ وہ جو خمر تھی نا, وہ ڈریس کا حصہ تھا. اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ, آج آپ سمجھ جائیں گے, بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا, کہ جب عورتیں گھر میں کپڑے لیتی تھیں تو وہ دوپٹہ ساتھ لیتی تھیں. خمر خمار سے تھا, خمار چادر کو کہتے ہیں, ایسی چادر جس کو اوڑا جائے تو عورت اس میں چھپ جاتی تھی, وہ جسم کا حصہ تھا. یہاں جلباب ہے, یہ اس سے فرق ہے. جلباب کہتے ہیں وہ کپڑا جو عورت گھر سے باہر جاتے ہوئے گھر کے کپڑوں کے اوپر پہنے گی. یہ تعریف لکھ لیں, آسان ہو جائے گی بات. اسلام کا کم از کم مطالبہ ایک عورت سے کیا ہے, کہ جن کپڑوں میں گھر میں بیٹھی تھی نا, ان میں اٹھ کے باہر نہیں جائے گی, اس کے اوپر کوئی چیز لے گی. वो खुली चादर हो, उसको जिलबाब की तरह बुक्कल मार ले, लपेट ले, उसको ऊपर से ढीला करके मुंह के ऊपर भी डाल ले, हाथ पे डाल ले, ठीक है। उसको सिला के एक ढीले से अबाय की सूरत में कर ले तो भी ठीक है। उसको गाउन की शक्ल में जरा थोड़ा सा शेप दे ले, इट्स ओके, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। दो हिस्सों में करके ऊपर, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ऊपर का बुरका नीचे का बुरका, कभी होता था ऐसे, वो भी ठीक है। स्काफ की सूरत में कर ले और आधा नीचे गाउन हो, ये भी ठीक है, सब ठीक है। अल्लाह ने कोई स्टाइल ऑफ अबाया नहीं बताया। और अगर सर से लेकर पांव तक एक ही कर ले तो भी ठीक है। असल इल्लत समझनी है कि औरत उसमें छुप जाए, औरत के खद्दोखाल, उसकी जिसामत, उसका जिस्म पतला मोटा, उसके जिस्म के वो हिस्से जो दूसरों के लिए अट्रैक्शन का जरिया बनते हैं, उसको दूसरों के सामने ना दिखाएं। अब ये तो सारी आयतें हैं ना, आप देखिए कि हमारे इस दौर को अगर आप 20-25 साल पीछे ले जाएं, तो हमारे अपने घरों की, यानी हमारे अपने सम्राट पाकिस्तानी कल्चर ही मैं कहूंगी दोबारा, खानदानी और शरीफ औरतें क्या करती थी, घर से बाहर जाते हुए एक बड़ी सी चादर लपेटती थी, चिकन की होती थी, चलो होल्स वाली है जो भी है, लेकिन लोग लेती थी। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, पाकिस्तान के और इंडिया के जो कट्ठे दौर थे, बरेस्कीर पाको इंता, आपको होता है कि आला और ऊंचे खानदान की जो औरतें थी ना, वो ज्यादा बड़ी और मोटी चादरें लेती थी। औरत के आला नसब का होने की दलील थी, और उसको साथ ही मुंह पे भी डाल लेती थी, जिसको घूंघट निकालना कहते हैं, ठीक है। युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, इट्स ओके, ये कर लेती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सिल के निकाब की शक्ल इख्तियार कर गया, इजी हो गया ना निकाब। पहले निकाब आपको पता है कि बुरके के साथ होता था, जैसे अगर आप देखें कि ये, जैसे मैंने स्कार्फ लिया हुआ, इसके ऊपर दो और कपड़े होते थे, वो उसको औरतें पहनती थी, जहां अब्बा जी दिखते थे वहां लटका लेती थी। अब्बा जी से बड़ा सख्त पर्दा करती थी, दूसरों से करे ना करे, छुप के जाती थी बाजारों में, अब्बा जी दिख गए तो फौरन पर्दा किया, पता ही ना चले बहू आई हुई है शॉपिंग करने सुनार के पास, ऐसा होता था ना। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल बदल गई। ये जो आज काली निकाब हम लोग पहनते हैं, ये तुमने खुद बनती हुई देखी है, हमारी मेरे हले माए तो ऐसी नहीं पहनती थी, वो बस वो काला बुरका, और आपको होता कि उसमें आंखें भी नहीं खुलती थी, आंखों के आगे पतला सा शिफॉन का कपड़ा था। अब आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये चीज बदल गई। आज हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें, हिकमत समझ लीजिए, फिर बात समझ आएगी। साथ ही इधर आयत 53 को दोबारा ले लेते हैं कि फसलू हुन्न मिन वराइल हिजाब, जब भी औरतों से कोई मांगो चीज तो पर्दे के पीछे से मांगो। अब सवाल पैदा होता है कि ये सारा कुछ लफ्ज जो है, ये क्या इतनी मुश्किल क्या है? तो समझ लीजिए, जिलबाब के बारे में मुफस्सरीन ने, जो अहले लुगत कह लीजिए, यानी डिक्शनरी में अगर आप देखें तो जिलबाब को कहते हैं हुवर रिदा फोकल खिमार, चार लफ्ज हैं, बोल ले मेरे साथ आप भी, हुआ अर रिदा, ये आप बोलना नहीं चाह रहे, ये आवाज नहीं कर रही, जितने आप लोग हैं तो गूंजना चाहिए हॉल है, हुआ अर रिदा फौकल खिमार, हुआ मैंने वो यानी जिलबाब, अर रिदा चादर है, रिदा नाम भी है ना उर्दू में भी, चादर दुपट्टा आंचल कुछ भी कह ले, ये एक चादर है फौक ऊपर अल खिमार, खिमार के, खिमार के आपके सूट का मैचिंग दुपट्टा, कलर दुपट्टा, फूलों वाला कढ़ाई वाला दुपट्टा। बास दफा बास सिस्टर्स कहती है दुपट्टा ही तो लिया हुआ है, अब जब से थ्री पीस सूट्स का रिवाज आया, स्पेशली लॉन के, कॉटन के और मरीना के, जो भी ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं, तो लोगों ने सोचा ये भी तो एक चादर है ना, अब इसके ऊपर और चादर क्या ले, नहीं, हुवर रिदा फोकल खीमार, जिलबाब तो पहननी ही पड़ेगी। घर में अगर आपने जो चीज पहन ली है, अगर आप घर में भी जिलबाब पहन रही हैं तो ये बड़ी नासमझी की बात है, ये तो आपने अल्लाह की दी हुई एक रुख्सत को मिस यूज किया और घर वालों का भी नाक में दम कर दिया, हर वक्त आप उसी जिलबाब में उनको दिख रही हैं। तो जरूरत है इस बात की कि एक औरत घर से निकलते वक्त कुछ भी पहन ले, बस इतनी सी बात समझ लेंगे तो बात जो है वो समझ आएगी। अब चलते हैं जरा इसकी थोड़ी सी लफ्जी वजाहत पे, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, युदनीन का लफ्ज ना इदना, इदना का मानी है करीब करना, लपेट लेना, मगर जब इसके साथ अला आए, यहां आ रहा है अला, बिल्कुल आ रहा है, युद्ध नीना अलई हिन्ना में अला, जब अला आ जाता है सॉरी, तो इसका मानिए इरखा, यानी उर्दू में लिख लें ऊपर से लटका लेना, ऊपर से लटकाना है। ये देखिए एक सिली भी निकाब है ना जो हम अपने स्काफ के ऊपर पहनेंगे। अब इदना क्या है, ये आपको मैं दिखाना चाहती हूं कि जब युद्ध नीना के बाद अला आ रहा है ना, तो ये ऐसे था, अब करके दिखाऊं, वैसे तो आप सबको पता ही है, लेकिन इस लफ्ज की खूबसूरती देखें कि अल्लाह ने सीधा सीधा क्यों नहीं कह दिया निकाब कर लो, स्काफ पहन लो, अबाया ले लो, नहीं, लफ्ज़ बता रहे हैं। अब ये देखिए, जैसे ये मैं इसको बांधती हूँ ना, ये जो लफ्ज़ है ना, इदना अला, ये क्या है, ये ऊपर से डाल लो, ये ऐसे जैसे घूंघट नहीं होता यूं, अब ये यूं डालना था, अब मुझे नहीं दिख रहा तो इसको यूं करके लंबा किया और इधर में थोड़ी सी देखने की जगह बन गई, ठीक है। ये जो ऊपर से डालना है, अब आप कहते हैं कि इदना इलाही कैसे, नहीं अब इसमें कैसे करूं मैं, सिली हुई चीज है, मेरा मुंह नहीं खुल रहा इसमें, इस पे करना मुश्किल होगा। इतना के इसके ऊपर से कुछ डाल दो और बिल्कुल इसका अगर लफ्जी तर्जमा लिखे घूंघट तो बेस्ट है। यार मैं इसको यूं करूं, अगर मिसाल है ये मैं बाहर पहनती तो मैं इसको क्या करती, अब ये होगा नहीं वरना, ये मैं यूं कर लेती, यानी किसी भी तरह से ये मेरे मुंह के ऊपर आ जाए, ये है युदनीना अला कमानी, ठीक है। कुछ लोगों ने इसको लपेट लेना कह दिया, वो ठीक नहीं है, ये तावील है इस लफ्ज की जो आज के दौर के कई मुफस्सरीन ने इस आयत की में की, बस लपेट लो, और वो कहते हैं बस और कुछ नहीं, खुदा के लिए मुंह ना छुपाना, मर्दों को क्या चाहिए, औरतों के चेहरे ही तो देखने होते हैं। अब वो निकाब पहन ले, वो इतने अपसेट होने लगते हैं, ऐसे लगता है कि सांस उनका बंद हो रहा है, घुटन उनको लग रही है, गर्मी उनको लग रही है, ब्लड प्रेशर उनका हाई है, और औरतों की अल्लाह की बना सवाल देखिए, स्कार्फ पहनने लग गए हैं, बाल गिरने लग गए हैं जी, तो जो सारी औरतें बाल खोलती हैं उनके बाल नहीं गिरते, यानी लोग कहते हैं स्कार्फ पहने रखेंगे ना ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बाल झड़ेंगे, अल्लाह के हुक्म से हमारे तो कोई नहीं झड़ते, जो झड़ते तो वैसे भी झड़ते हैं, ऐसी चीज सिर्फ एक मजाक है। इन तकैतुन्ना को याद रख लीजिए, जब तकवा होता है तो इंसान अल्लाह की इन बातों के ऊपर कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद देखिए एक और बहुत ही खूबसूरत लफ्ज, जहां इसमें देखिए युदनीना अलैहिन्ना, अगर आइन की जगह अलिफ होता इलैहिन्ना होता ना तो मानी वो होता जो तावील में है। फिर आप यहां एक लफ्ज बड़ी काबिले गौर है, अगर लफ्ज देखिएगा मिन जलाबी बहन, ये मिन क्या है, मिन सम ऑफ, और अरबी जुबान में मिन लफ्ज के दो मोटे मोटे मानी याद कर लें, मिन कहते हैं सम ऑफ, इंग्लिश में कहते हैं ना कुछ हिस्सा, और एक होता है मिन बयानिया, एक्सप्लेन करने के लिए, यहां क्या कहा कि चादर का कुछ हिस्सा लटका लो, यानी क्या पूरी चादर ही मुंह पे लटका लो, यानी सम ऑफ के मानों में कर लो, कुछ हिस्सा ऐसा कर लो ताकि चादर थोड़ी सी मुंह पे चली जाए। अब सवाल पैदा होता है कि इस सारी चीजों से मिलेगा क्या, पहले मैं इसकी चंद रिवायतें आपको सुनाना चाहूंगी कि जहां ये आयतें उतरी थी सहाबा इसको कैसे समझे, या 2014, 15, 16 इसको छोड़ दें, बैक पे चलते हैं, क्योंकि चीज जितनी पुरानी होती है उतनी ऑथेंटिक होती है। तहदे रिसालत के जो करीब तरीन के लोग थे उन्होंने इसको कैसे समझा, मोहम्मद बिन सीरी ने हजरत उबैदा से इस आयत का मतलब पूछा, तो हजरत उबैदा नबी सल्लम के जमाने में मुसलमान हो चुके थे मगर हाजरे खिदमत ना हो सके, हजरत उमर के जमाने में आए फिर वहीं रहे, इनको फिक्र में और कुजा में काजी शुरैह का हम पल्ला समझा जाता है, यानी बहुत इल्मी शख्सियत है। इनसे किसी ने पूछा सुनाओ भाई ये युद्दीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, उन्होंने जवाब में कुछ कहने की बजाय अपनी चादर उठाई और उसे इस तरह ओढ़ा कि पूरा सर और पेशानी और पूरा मुंह ढांक कर सिर्फ एक आंख खुली रह गई। आप कहेंगे इनकी चादर कौन सी थी, आपने देखा अरब लोग भी सर पे रुमाल सा लेते हैं, अरब की गर्मी बहुत शदीद होती है तो मर्दों को भी सर ढांपना पड़ता है, टोपी पहनेंगे गर्मी लगेगी इसलिए वो खुला कपड़ा लेते हैं, तो इन्होंने यानी उससे मुंह को छुपा कर दिखाया। फिर इसी तरह से मुफ्ती मुफस्सरीन ने इसकी तफसीर क्या की कि अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया जब वो किसी काम के लिए घरों से निकलें तो अपनी चादरों के पल्लू ऊपर से डालकर अपना मुंह छुपा लें और सिर्फ आंखें खुली रखें। इसी तरह से बाकी सब लोग जो हमारे थे उन्होंने रखा। इमाम इब्ने जरीर कहते हैं इनका कौल बड़ा काबिले गौर है, यानी आज के दौर में खास तौर पर हमारे लिए, कहते हैं युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, यानी शरीफ औरतें अपने लिबास में लौंडियों से मुशाबे बनकर घरों से ना निकलें कि उनके चेहरे और सर के बाल खुले हों, बल्कि उन्हें चाहिए कि अपने ऊपर अपनी चादरों का एक हिस्सा लटका लिया करें ताकि कोई फासिक इनको छेड़ने की जरूरत ना करे। यानी आज तो मॉडर्न होना कहलाते हैं ना, अरबों में लौंडियां सर पे दुपट्टा नहीं ले सकती थी, हजरत उमर ने एक दफा एक किसी लौंडी को इस तरह बहुत छुपे छुपाए देखा तो आपने उसको डांटा है तू हमारी शरीफ औरतों की ममासलत करती है, यानी गलती लग जाएगी लोगों को कि ये शरीफ खानदान की है तो हो सकता है वो उसके साथ किसी और तरह का मामला करना चाहे। अबू बकर जस्सास कहते हैं ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि जवान औरतों को अजनबियों से अपना चेहरा छुपाने का हुक्म है और इसे घर से निकलते वक्त सतर और इफ्फत मआबी का इजहार करना चाहिए ताकि मुश्तबे सीरत व किरदार के लोग इसे देखकर किसी तमे में मुबतला ना हो जाएं। यही बात आगे आ रही है जो मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी पहले से, जालिका अदनायो रफ नफला यूज़ईना, आयत को देखिएगा, ये बात ये इस अंदाज से अपने मुंह को छुपाना, ये बात इस बात के ज्यादा करीब है, इट्स क्लोज टू दिस, यानी मोर पॉसिबल है, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है एनी योर ऑफ ना कि वो पहचान ली जाए। अब सवाल पैदा होता है, हम तो हमेशा कहते रहे कि पर्दा इसलिए कि पहचाने ना जाए, फर्क समझे? यानी जो पॉइंट आपको बताना चाह रही हूं उसके ऊपर शायद आप गौर करें, हम कहते हैं पर्दा इसलिए करो कि तुम पहचानी ना जाओ, अल्लाह कह रहे तुम पर्दा इसलिए करो कि तुम पहचानी जाओ। क्या मतलब है? क्या पहचान हो तुम्हारी? आप सब बोल दें तुम मुस्लिम हो, आई एम मुस्लिमा, आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट ए कॉमन वुमेन, हर एक मुझे नहीं देख सकता, ये शारा आम नहीं है, ये सिर्फ VIPs के लिए है, ये स्पेशल लोगों के लिए है जो मेरे महरम होंगे। यानी खुद को छुपाना औरत की तरफ से एक जुर्रत और औरत की तरफ से इस किस्म का सिंबल है कि आई एम नॉट अवेलेबल, इसीलिए का फला यूज आई था। कभी निकाब और हिजाब वाली औरत को कोई नहीं छेड़ेगा, ये याद रखिए। ये जो केसेस आप सुनते होंगे, पढ़ते हैं बसों में, ट्रेनों में और इधर और उधर, वो सिर्फ उन औरतों के लिए होते हैं कि जो खुद उस हाल हुलिये में होती हैं। जिन मुल्कों में बेपर्दगी ज्यादा है वहां रेप के केसेस ज्यादा है, वहां बेहयाई ज्यादा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तुम्हारी पहचान है, इट्स योर सिंबल। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। जितना ज्यादा अल्लाह के हुक्मों को मानते जाएंगे अल्लाह माफ करेगा। अब ये यहां अल्लाह ताला की सिफात क्यों आई? पिछली जिंदगी में जो हुआ सो हुआ, अब क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, दिस एंड दैट, किस तरह ये होगा, ये अब हम और आप खुद सोचें। कुछ लोग कहते हैं कल के दौर में ठीक था, अब ठीक नहीं है, तो शरीयत तो वही है। इस पे मैं आज ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी कि मुझे अच्छी तरह भी याद है, इसलिए मैं दोबारा वो नहीं करना चाह रही बात। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह और पिछले साल भी दोनों के दौरे कुरान में मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपको रिटर्न नोट कराए थे चेहरे के पर्दे के। आप साथियों ने अगर सुनना हो तो इन्हीं आयतों की तफसीर सिर्फ इस साल दौरे कुरान में 5-6 मिनट की होगी, इन आयतों की, उसको सुन लीजिए। उसमें मैंने पूरे पॉइंट शायद 10-15 पॉइंट लिखवाए थे कि आखिर क्या दलाइल हैं चेहरे के पर्दे के, हिकमतें क्या हैं, फायदे क्या हैं। लेकिन आज सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए कि जब हम अल्लाह का एक हुक्म मानते हैं ना तो उसकी रहमत आती है। मुझे हदीस याद आ रही है कि एक हद अगर जारी होती है ना किसी मुल्क के कोने पे, तो 40 साल की बारिश से ज्यादा खैर आती है वहां। एक हदीस का खुलासा है, एक औरत अपने इस 5 से 6 फुट के जिस्म पे अल्लाह की हदूद को नाफिज करेगी ना, रहमतें पाएगी। गंदे मर्द उसको रिश्ता नहीं भेजेंगे, पाक लोग आएंगे। वो बहुत ग्लैमरस नहीं भी होंगे, वो बहुत प्ले बॉय टाइप के और बहुत ज्यादा के नाज देखने लिए नहीं भी होंगे, लेकिन दिल के मुत्तकी होंगे। इसलिए पर्दा कर लेना और खुद को छुपाना, और मैं कहती हूँ जितने आज मैं और आप मुसलमान हैं वेस्ट में, अगर हम इस हुक्म पे आज अमल करते तो हम इतने जलील ना होते। आज जो हमारे नबी की हालत की जाती है, और जो आज हम मुसलमानों को क्या कुछ, जिसका जो दिल करता है वो कहता है इसकी वजह यह कि फला यूज ही ना, हमें तकलीफ दिए जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्मों पे अमल करने से दुनिया वाले भी आपकी तरफ जुरत नहीं कर सकते। बीसियों ऐसे वाकयात है सिस्टर्स के कि सिर्फ पर्दे की वजह से वो मर्दों की गंदी नजरों से बच गई। अल्लाह ताला कहते ला इल्लम यंतखिल मुनाफिकूना, और अगर नहीं बाज आएंगे मुनाफिक, वल्लज़ी नफी कुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, वल मुरजिफून फिल मदीना, और अफवाहें फैलाने वाले मदीना में, यानी इन सारी बातों को सुन के भी। आप इस आयत को देखिए कितनी अहम जगह पे आयत आई है, पर्दे का हुक्म, मौजू दाढ़ी का हुक्म, सुनते ही निफाक ऐसे उभरता है जैसे पानी को जोश दें तो उसमें से निकलने लगता है। फिर बोलेंगे दिल का मुनाफिक सिर्फ इन चीजों पे बोलता है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमें जो कहा छुपा दो। लोग तो कहते हैं शर्म का छुपाने से क्या होता है, ये भी तो गोश्त का एक टुकड़ा है, आपको तो ये बातें मौजूद है, कहते इसे क्या फर्क पड़ता है, ये तो गोश्त का टुकड़ा है, इसमें क्या होता है, और सतर है, बस छोटा सा कपड़ा पहन लो तो सतर ढक गया, यही सतर है। और वो खुद अपने इन खुद साख्ता कवानीन की सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सनसनियां फैलाने वाले ये मुनाफिक हैं, हर वक्त कोई ना कोई ऐसी इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। और आप देखिए आयतें पढ़ते हुए आपको लग रहा है कि ये तकरीबन 1450 साल पहले की उतरी हुई है। आज क्या एक शोशा खत्म होता है यूनिवर्सल लेवल पे दूसरा नहीं शुरू हो जाता? अल्लाह कहते हैं ये है मुरजिफून रजफा से, ये फेंकते हैं, ये चाहते हैं हर वक्त कोई ना कोई बात हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं नुहरियन कबीहिम, तो ऐ नबी हम आपको इन पर उकसा देंगे, यानी अब हम इनके तरफ इकदाम उठाएंगे। डोंट बी अपोलोजेटिक, ये आज हम अपोलोजेटिक मुस्लिम्स ने दूसरों को जरूरत दी है। जब हम वी आर प्राउड टू बी मुस्लिम होंगे ना, तो ये आपके और हमारे खिलाफ बातें नहीं कर सकते। लोग पूछेंगे क्यों भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, मैंने पर्दा किया तुम्हें क्या हो रहा है, मेरी आंखें तो खुली हुई है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। डॉक्टर्स तुम्हारे निकाब करते हैं जब वो ऑपरेशन करते हैं, सड़कों पे काम करने वाले मर्द तक तुम्हारे निकाब करते हैं जब वो सड़कें बना रहे होते हैं, खला में जाने वाले पूरा मुंह छुपा लेते हैं जब वो निकाब करते हैं, और आधे से ज्यादा 90% वेस्ट निकाब करता है नॉर्वे में जब -20-30 होता है। औरतें तो औरतें, मर्द भी निकाब करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सब वो खुश हैं कि भाई हमने मरना थोड़ी है मुंह खोल के, हमारी तो नाक के अंदर के बाल ऐसे चुभेंगे, सुइयां चुभती हैं, वो पूरे मुंह के ऊपर लपेट के ऐसे फिरते हैं निकाब, उस पर कोई नहीं बोलता। हम अपने ऊपर क्यों शर्मिंदा हूं? तो बहरहाल अल्लाह तआला कहते हैं तुम एक दफा अपनी बात पे जम जाओ, हम तुम्हें इन पर उकसाएंगे, सुम्मा ला युजावीरू न कफीहा, फिर ये आपके पड़ोसी बनकर नहीं रहेंगे इस शहर में, इल्ला कलीलन मगर थोड़े, यानी जहां इस्लाम फैलने लगता है गोरे वहां से निकलने लगते हैं, फिर वो यही कहेंगे कि हम इनसे दूर रहें तो बेहतर है, ये मुराद है और यहूद की तरफ इशारा है, सब चले गए थे अल्लाह के नबी को छोड़कर कि ये पता नहीं हमारे लिए क्या मामले कर रहे हैं, मलूनीन फिटकारे हुए लोग हैं, ऐ नमासु किफू जहां कहीं ये पाए जाएंगे, उखिजू पकड़ लिए जाएंगे, वकुत्तिलु तक्तीला और बुरी तरह इनको कत्ल कर दिया जाएगा। बेजारी नफरत अल्लाह की तरफ से ऐसे लोगों पे जो अल्लाह के नबी की सीरत पे हाथ उठाते हैं और मुसलमान औरतों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं जो उनको करनी नहीं चाहिए, और सुन्नत अल्लाह ही फिल लजीना खलऊ मिन कबलू, ये अल्लाह की सुन्नत रही इन लोगों के बारे में जो पहले गुजर गए, वलन तजीद अली सुन्नत अल्लाह ही तब्दीला, और तुम अल्लाह के तरीकों में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यहां पे ये बात पूरी होती है जिसमें यकीन करें बड़ी शिद्दत है, और हम सब अगर इस पे अपने आप को सोचें तो हमारे लिए बहुत कुछ है। अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो हमें अमल की तौफीक दे, तौफीक की दुआ मांगे, अपोलोजेटिक नहीं, और कभी किसी को बुरा ना कहें। अब कोई फतवा मांगता है क्या है? अच्छा जी, कुछ तो पर्दे को कहते हैं चेहरे का पर्दा खुलता है, कुछ का नहीं, ये भी मैंने दलायल दिए थे वहां, तो इसको जो मैं लीस्ट दर्जे पे ले आऊं ना, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि न्यूली मुस्लिम्स, न्यूली मुस्लिम्स कौन है जो अभी नए नए दीन में आ रहे हैं, गुड बेटर दी बेस्ट, अगर कोई सिर्फ स्काफ ले रहा है इस ओके दूसरे से बेहतर है, फिर उसके बाद जरा फैंसी रंग बिरंगे निकाब भी करने लग गया, इट्स गुड दी बेस्ट, क्या जो जितना अपने आप को छुपाएगा, और ये अल्लाह का हुक्म है। आप देखिए सेम मसला, दो बड़े मसले आज के दौर के, औरत का निकाब, मर्द की दाढ़ी, और जब किसी एयरपोर्ट पे निकाब वाली औरत के पहलू में दाढ़ी वाला मर्द होता है तो अल्लाह के हुक्म से कभी कोई उसकी तरफ नजर नहीं डालता। ये मैं आपको अपने बीसियों बार के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, ऐसे मर्द का साथ मिल जाए कि जिसकी दाढ़ी है, और जितनी इज्जत जितनी रिस्पेक्ट वेस्ट में मिलती है पर्दे को, मैं कह सकती हूँ अपने मुल्कों में भी नहीं मिलती। अभी इसी दफा रिसेंटली जब मैंने जो भी कहीं का लास्ट ट्रिप किया, एक दो वीक पहले कहीं से आई हूँ, और नॉर्मली वो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते कभी उन्होंने क्या, और एक औरत थी, कभी बिल्कुल नहीं पूछते कि निकाब है कि नहीं, तो लेकिन उन्होंने जब मैं वहां से गुजरी जहां से सब गुजरते हैं, तो लेडी ने कहा कि मैं जो बाहर सबको वो यूं नहीं खड़ा करके अजीबोगरीब वो पीपीटीसी करवा रहे होते हैं, सर्च करते हैं, वो सबके सामने हो रहा होता है, तो मुझे औरत कहती यू वॉन्ट टू गो इन द प्राइवेसी, मैं कहा यस ऑफ कोर्स वाई नॉट, तो मुझे अंदर ले गई, साथ चंद कदमों पे उन्होंने एक छोटा सा कमरा बना के उसमें औरतों को सर्च करते हैं, मैं अंदर गई, मैंने झट से उसके कहने से पहले निकाब उतारा, वो मेरा सर्च कर रही, वो तो मैं हमेशा उनको एक ही जुमला बोलती हूँ, वेरी गुड मसाज, यू नो पैसेंजर्स आर वेरी टायर्ड, मोस्टली रात को सोते भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा मसाज, तो वो खुश होती हैं, फिर अक्सर वो अच्छी अच्छी बातें भी करने लग जाती हैं। तो बहरहाल तो इसमें वाकयात तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा वक्त इतना ही है।